यरमिया अध्याय 30, अध्याय 30 से लेकर 33 के इन चार अध्यायों में हम अंतिम समय में प्रवेश करते हैं। इन अध्यायों में भविष्य में आने वाले महाक्लेश का विवरण है। ये उन 7 वर्षों के समय का विवरण है जब परमेश्वर इसराइल के साथ अपना व्यवहार प्रदर्शित करेगा। इसराइल के लिए 70 सप्ताह निर्धारित किए गए थे। इनमें से मसीह के आगमन तक 69 सप्ताह पूरे हो चुके थे। अब केवल 1 सप्ताह बाकी बचा है जो आवश्यम भावी है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि ये तब पूरा होगा जब क्रिस्त विरोधी आएगा। यरमिया के मुख से परमेश्वर इस शेष 1 सप्ताह के बारे में कहता है। वो इसराइल को इस समय उनके देश में एकत्रित करेगा और उसके साथ अपना व्यवहार प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार यहां हम इन भावी घटनाओं को देखते हैं जो उस 7 वर्षीय सप्ताह में पूरी होंगी। इसे यरमिया याकूब का संकट कहता है। यरमिया अध्याय 30 पद 1 से लेकर 3 तक। यहोवा का जो वचन यरमिया के पास पहुंचा वो ये है, इसराइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है, जो वचन मैंने तुझसे कहे हैं उन सबों को पुस्तक में लिख ले, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, ऐसे दिन आते हैं कि मैं अपनी इसराइली और यहूदी प्रजा को बंदवाई से लौटा लाऊंगा, और जो देश मैंने उनके पितरों को दिया था उसमें उन्हें फेर ले आऊंगा, और वे फिर उसके अधिकारी होंगे। यहोवा का यही वचन है। वो उस जन समूह की चर्चा कर रहा है जो आज इसराइल में देखने को मिलता है। इसे आप बाबुल से यहूदियों का लौट आना न समझे। यदि आप अध्याय 30 का अंतिम पद देखेंगे तो वहां लिखा है, अंत के दिनों में तुम इस बात को समझ सकोगे। अतः इसे लिख ले कि अंत के दिनों में ये बात समझ में आएगी। आज जब हम यहूदियों को इसराइल देश में एकत्र होते देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है। यरमिया अध्याय 30 पद 4 और 5। जो वचन यहोवा ने इसराइलियों और यहूदियों के विषय कहे थे वे ये है, यहोवा यूं कहता है, थरथरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है, शांति नहीं भय ही का है। इसमें संदेह नहीं कि उस राष्ट्र ने अपने देश में आने के बाद आज तक शांति का समय नहीं पाया है। वे भय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक दिन समाचार पत्र में समाचार था कि किर्यात शिमोना के वासी रूसी कटेशु रॉकेटों की वर्षा से निरंतर भय के वातावरण में वास कर रहे हैं। यरमिया अध्याय 30 पद 6। पूछो तो भला और देखो, क्या पुरुष को भी कहीं जनने की पीड़ा उठती है? क्या किसी पुरुष को कभी प्रसव पीड़ा होती है? यरमिया अध्याय 30 पद 6 में आगे लिखा है, फिर क्या कारण है कि सब पुरुष जच्चा की नाई अपनी अपनी कमर अपने हाथों से दबाए हुए देख पड़ते हैं? क्यों सबके मुख फीके रंग के हो गए हैं? वो इसराइल के पुरुषों पर आतंक को देखता है। यरमिया अध्याय 30 पद 7। हाय हाय, वो दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वो याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वो उससे भी छुड़ाया जाएगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वो उन्हें संकटों से मुक्त करेगा। यरमिया अध्याय 30 पद 8 और 9। और सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है कि उस दिन मैं उसका रखा हुआ जुआ तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दूंगा और तुम्हारी बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा और परदेशी फिर उनसे अपनी सेवा न कराने पाएंगे, परंतु वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे, जिसको मैं उन पर राज्य करने के लिए ठहराऊंगा। यीशु फिर आएगा और परमेश्वर ख्रिस्त विरोधी का जुआ तोड़ देगा और यहूदा प्रजा फिर से अपने प्रभु परमेश्वर की उपासना करेगी और दाऊद की सेवा टहल करेगी। दाऊद का वंशज मसीहा जो यशय के ठूंठ से उदय होता है, यशया 9:7। उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। परमेश्वर की ये वाणी है जिसे मैं उनके लिए खड़ा करूंगा, यरमिया 30:10। इसलिए हे मेरे दास याकूब, तेरे लिए यहोवा की ये वाणी है, मत डर। हे इसराइल, विस्मित ना हो, क्योंकि मैं दूर देश से तुझे और तेरे वंश को बंधुआई के देश से छुड़ा ले आऊंगा। तब याकूब लौटकर चैन और सुख से रहेगा और कोई उसको डराने ना पाएगा। ये यीशु के फिर से आने पर होगा, यशाया 11:12। वो अन्य जातियों के लिए झंडा खड़ा करके इसराइल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशा से इकट्ठा करेगा। इसराइल फिर से एकत्रित और स्थापित किया जाएगा तथा वो यीशु को पहचानेगा और उसे मसीहा स्वीकार करके उसकी उपासना करेगा, यरमिया 30:11। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, तुम्हारे उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूं। धर्म शास्त्र के अनुसार संपूर्ण इसराइल मुक्ति पाएगा, क्योंकि सियोन में से एक मुक्ति दाता का उदय होगा जो पुत्रों के मन पितरों की ओर फेर देगा। ये यीशु के आगमन की भविष्यवाणी है। यरमिया 30:11 में आगे लिखा है, इसलिए मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिनमें मैंने उन्हें तितर बितर किया है, परंतु तुम्हारा अंत न करूंगा। तुम्हारी ताड़ना मैं विचार करके करूंगा और तुम्हें किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराऊंगा। तुम्हें दंड तो मिलेगा, परंतु तुम नाश नहीं होंगे, यरमिया 30:12-16। यहोवा यूं कहता है, तेरे दुख की कोई औषध नहीं और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा घाव बांधने के लिए ना पट्टी ना मलम है। तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है, मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी है। तू अपने घाव के मारे क्यों चिल्लाती है? तेरी पीड़ा की कोई औषध नहीं, तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने तुझसे ऐसा व्यवहार किया है, परंतु जितने तुझे अब खाए लेते हैं वे आप ही खाए जाएंगे और तेरी द्रोही आप सब के सब बंधुआई में जाएंगे और तेरे लूटने वाले आप लूटेंगे और जितने तेरे धन छीनते हैं उनका धन मैं छिनवाऊंगा। आपको ध्यान होगा कि यीशु ने कहा था मत्ती 25:31-36 और 41-45, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्ग दूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, और वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। यहां यीशु यहूदियों और यहूदी राष्ट्र के प्रति मानव व्यवहार का उल्लेख कर रहा है। समस्त जातियां परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़ी होंगी और यहूदी जाति के प्रति उनके व्यवहार का न्याय किया जाएगा। यही कारण है कि हमारे लिए ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हमारा दृष्टिकोण इसराइल के पक्ष में हो। परमेश्वर समस्त जातियों का लेखा लेगा और उन्होंने मसीह यीशु के भाइयों अर्थात इसराइल राष्ट्र के साथ कैसा व्यवहार किया। यहां परमेश्वर यरमिया के मुख से यही कह रहा है, वे जो तुझे फाड़ खाने को आते हैं उनका ही भक्षण किया जाएगा, तुम्हारे सब बैरी हरेक दासत्व में जाएगा और वे जिन्होंने तुम्हें लूटा है उनको लूट लिया जाएगा। यरमिया अध्याय 30 पद 17 और 18। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की ये वाणी है। वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है? यहोवा कहता है, मैं याकूब के तंबू को बंदवाई से लौटाता हूं और उसके घरों पर दया करूंगा और नगर अपने ही खंडर पर फिर बसेगा। और आज ये सत्य सिद्ध होता है, क्योंकि यरूशलेम का वर्तमान नगर प्राचीन खंडरों पर फिर से बनाया जा चुका है। यरमिया अध्याय 30 पद 18 से 20 तक। और राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा, तब उनमें से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। मैं उनका विभव बढ़ाऊंगा और वे थोड़े न होंगे, उनके लड़के वाले प्राचीन काल के समान होंगे और उनकी मंडली मेरे सामने स्थिर रहेगी, और जितने उन पर अंधेर करते हैं उनको मैं दंड दूंगा। परमेश्वर इसराइल राष्ट्र का पुनरुद्धार करेगा और अति महिमा में करेगा। आज अनेक बाइबल शिक्षक हैं जो दुर्भाग्यवश इस सत्य का इनकार करते हैं, और अनेक प्रचारक यहूदी विरोधी विचारधारा द्वारा छले गए हैं। मेरी इसराइल के पक्ष स्थिति को देखकर अनेक लोग मुझे पत्र और लघु पुस्तकाएं भेजते हैं जो इसराइल विरोधी है। उनका कहना है कि इसराइल राष्ट्र से परमेश्वर का लेन देन समाप्त हो चुका है और कलीसिया आज का आत्मिक इसराइल है तथा इसराइल को दी गई परमेश्वर की समस्त आशीषें आज कलीसिया को प्राप्त है। इसराइल राष्ट्र से अब परमेश्वर का संबंध समाप्त हो चुका है। वे अब समाप्त हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपना अवसर खो दिया है। परमेश्वर ने उसका त्याग कर दिया है। अब वे असाध्य हो चुके हैं और उनकी कहानी का अंत हो चुका है। ऐसा कदापि नहीं है। ये विचारक पुराने नियम के ज्ञाता नहीं है। यदि वे पुराने नियम को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि वे समस्त प्रतिज्ञाएं जो पुराने नियम में विहित है इसराइल राष्ट्र के लिए ही है, अर्थात याकूब के वंशजों के लिए, और वे किसी भी रूप में कलीसिया के लिए नहीं मानी जा सकती है, चाहे उन्हें आत्मिक व्याख्या ही क्यों न दी जाए। अब क्योंकि ये विचारक धर्मशास्त्र का सही अर्थ नहीं लगा पाते और पुराने नियम की भविष्यवाणियों के विषय में उनकी समझ भी अधूरी है, वे एक और भूल करते हैं कि कलीसिया महाक्लेश के समय से गुजरेगी, क्योंकि महाक्लेश के युग में परमेश्वर पवित्र जनों का उल्लेख करता है, परमेश्वर चुने हुओं का उल्लेख करता है। इस प्रकार उनके विचार में यदि महाक्लेश के समय में पवित्र जन और चुने हुए महाक्लेश के समय में होंगे तो निश्चय ही वो कलीसिया है, क्योंकि परमेश्वर ने तो इसराइल के साथ संबंध समाप्त कर दिया है। अतः समस्त प्रतिज्ञाएं तथा वे सब विषय जो इसराइल से संबंधित है अब कलीसिया ही गरोहर है, और उनकी समझ में इस प्रकार कलीसिया महाक्लेश में अवश्य होगी। ये केवल कलीसिया की आत्मिक व्याख्या है कि वो आत्मिक इसराइल है, और ये मानना है कि परमेश्वर ने सदा के लिए इसराइल को त्याग कर दिया है, अर्थात याकूब के वंशजों का। ये तो समस्त भविष्यवाणियों के खंडन का विचार है। क्या पत्रस ने नहीं कहा कि परमेश्वर ने संपूर्ण धर्मशास्त्र में अंतिम पुनरुद्धार की चर्चा की है? पत्रस धर्मशास्त्र से बताता है कि परमेश्वर ने संपूर्ण धर्मशास्त्र में उस दिन के लिए कहा है जब इसराइल का अनंत पुनरुद्धार होगा और उसकी संपूर्ण परिस्थिति का भी, परंतु ये लोग पता नहीं जानते हुए या अज्ञानवश उस गंभीर भूल में पड़ जाते हैं और कहते हैं आज कलीसिया महाक्लेश में है, क्योंकि देखो वचन पवित्र जनों के विषय में कहता है। परंतु वो क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 पद 7, और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो पशु जो अतः कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। पवित्र जनों अलविदा, तुम पर क्रिस्त विरोधी प्रबल होगा। इससे क्या आपको प्रोत्साहन नहीं मिलता? दानियल की पुस्तक में एक छोटे सिंह का उल्लेख है जो पवित्र जनों से युद्ध करता है। ये क्रिस्त विरोधी है जो उन पर प्रबल होता है। पवित्र जनों, आपको बधाई हो। क्रिस्त विरोधी आपका नाश करेगा। आ, इस भ्रम में मत पड़ जाना। यीशु ने क्या कहा था? मती अध्याय 16 पद 18, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। तब ये पवित्र जन कौन है जिन पर क्रिस्त विरोधी प्रबल होगा? ये इसराइल है। ये अंतिम 7 वर्षों का सप्ताह याकूब के संकट का समय होगा, और ये याकूब के संकट का समय इसलिए होगा कि उसने क्रिस्त विरोधी के साथ वाचा बांधी होगी। वे अपने मंदिर के पुनर्निर्माण के विषय में इतने अधिक आतुर होंगे कि जब यूरोप का शासक आकर उनसे कहेगा, देखो हम तुम्हारे मंदिर के पुनर्निर्माण में तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि तुमने आखिरकार रूस का सफाया करके हमें उठने का अवसर प्रदान किया है, इसलिए हम आपके लिए कुछ करके आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हम यहां एक दीवार खींचकर डोम ऑफ द रॉक मस्जिद को अलग कर देते हैं, जिससे कि आप लोग निर्विघ्न शांत रूप से अपने मंदिर का पुनर्निर्माण करें। इस उपकार के कारण इसराइल इस पुरुष की मसीहा के तुल्य उपासना करने लगेंगे। अब वो 3.5 वर्ष के पश्चात फिर से आएगा और मंदिर के महापवित्र स्थान में खड़ा होकर कहेगा, बहुत हुआ, अपने बलिदान और अपनी प्रार्थनाओं को बंद करो, मैं ही परमेश्वर हूं, इसलिए तुम मेरी उपासना करोगे। अब सब यहूदी लेबनोन जॉर्डन वरन ट्रांस जॉर्डन के क्षेत्र में पलायन करेंगे। ये क्षेत्र पेत्रा का क्षेत्र होगा। यहां परमेश्वर उनकी सुधि लेगा। क्रिस्त विरोधी उनके पीछे अपनी सेना भेजेगा तो पृथ्वी सेना निगल जाएगी। वो वहां बचे हुए यहूदियों से युद्ध करेगा और उनका सफाया कर देगा। ये याकूब के संकट का समय होगा, परंतु उनका उद्धार आने वाला ही है। अब क्रिस्त विरोधी अपनी सेना लेकर अफ्रीका को जीतने निकलेगा। वो मिस्र से होकर आगे बढ़ेगा। वो इथियोपिया की सीमा तक पहुंचा ही होगा कि उसे समाचार मिलेगा कि रूस और चीन मित्र राष्ट्र बनकर परात नदी पार करके यूरोप के विजय अभियान पर अग्रसर होंगे। वो तुरंत ही इथियोपिया से लौटकर रूस और चीन की सेना का सामना करने आएगा। उनकी मुठभेड़ हरमिगदोन की घाटी में होगी, जो इसराइल की सीमा में है। यहां अंतिम महायुद्ध होगा, जब ये सेनाएं, जो करोड़ों की सैनिक शक्तियां होंगी, विध्वंस और रक्तपात में व्यस्त होंगी, तब सियोन से मुक्तिदाता प्रकट होगा। वो अपने 10,000 पवित्र जनों के साथ आएगा। वो अपना पैर जैतून के पर्वत पर रखेगा, तभी एक महान भूकंप होगा और जैतून पर्वत विभाजित हो जाएगा। उसका एक भाग उत्तर दिशा में होगा तथा दूसरा दक्षिण दिशा में, और इस प्रकार वहां एक घाटी बन जाएगी जो मृत सागर तक होगी, तथा उस घाटी में जल स्रोत फूट निकलेंगे और यरूशलेम से एक नदी प्रवाहित होगी जो मृत सागर की ओर बहेगी। इसकी दूसरी धारा भूमध्य सागर में जा मिलेगी, क्योंकि इस नदी की एक धारा मृत सागर में निर्मल जल लाएगी, तब मृत सागर मृत न रह जाएगा, वो जीवंत हो जाएगा। वहां मत्स्य व्यवसाय आरंभ हो जाएगा। एन गेदी में तब जाल सुखाए जाएंगे। परमेश्वर ने ये सब पहले ही कह दिया है। जब यीशु आएगा तब उसकी महिमा और उसके मुख से निकलने वाले शब्द के द्वारा वो इस पाप के पुरुष को, क्रिस्त विरोधी को, झूठे मसीहा को नाश कर देगा। अब वो दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा। वो पृथ्वी पर परमेश्वर की राज्य की स्थापना करेगा। वो समस्त जातियों पर लोहे के राजदंड द्वारा राज्य करेगा। वे जिन्होंने विजय पाई है उनसे वो कह चुका है कि वे उसके साथ जाति जाति पर राज्य करेंगे। हम भी उसके साथ याजकों और हाकिमों के तुल्य राज करेंगे, जब वो इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा। हमारी तो ये प्रार्थना है ही, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। यशाया 2 अध्याय 4 पद, वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार ना चलाएगी, ना लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। यशाया अध्याय 11 पद 6 और 7। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिम बैल की नाई भूसा खाया करेगा। तब कोई युद्ध ना होगा, परमेश्वर के राज्य में हिंसा नहीं होगी, वो धर्म आनंद और शांति का राज्य होगा। यरमिया की ये भविष्यवाणी परमेश्वर के राज्य के युग की भविष्यवाणी है। वो अंधकार को पार करके अर्थात अंधकार और बंधुआई को पार करके पद 19 में कहता है, तब उनमें से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। मैं उनका विभव बढ़ाऊंगा और वे थोड़े ना होंगे, उनके लड़के वाले प्राचीन काल के समान होंगे, और उनकी मंडली मेरे सामने स्थिर रहेगी, और जितने उन पर अंधेर करते हैं उनको मैं दंड दूंगा। यरमिया अध्याय 30 पद 21 से लेकर 24 तक। उनका महापुरुष उन्हीं में से होगा, और जो उन पर प्रभुता करेगा वो उन्हीं में से उत्पन्न होगा। मैं उसे अपने निकट बुलाऊंगा और वो मेरे समीप आ भी जाएगा, क्योंकि कौन है जो अपने आप मेरे समीप आ सकता है? यहोवा की यही वाणी है। उस समय तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। देखो, यहोवा की जल जलाहट की आंधी चल रही है, वो अति प्रचंड आंधी है, दुष्टों के सिर पर वो जोर से लगेगी। जब तक यहोवा अपना काम ना कर चुके और अपनी युक्तियों को पूरी न कर चुके, तब तक उसका भड़का हुआ क्रोध शांत न होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को समझ सकोगे। ये महाक्लेश का समय परमेश्वर की ओर से आंधी का सा होगा, और वो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करेगा। तदोपरांत परमेश्वर के राज्य की स्थापना की जाएगी। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के अंतिम शब्द है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद 17, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत मेट ले। और यीशु ने कहा, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। यूहन्ना कहता है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद 20, जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है, हां मैं शीघ्र आने वाला हूं, आमीन, हे प्रभु यीशु आ। ओह, यीशु के आने में और पृथ्वी पर अपने धर्म का राज्य स्थापित करने के दिन में कितनी देर है। उस दिन में कितनी देर है जब हम संसार को वैसा ही देखेंगे जैसा उसने उसे चाहा और आरंभ से ही उसकी अपेक्षा की। एक ऐसा संसार जो भौतिक और आत्मिक प्रदूषण से स्वच्छ किया गया, जिसमें हम उसके प्रेम, उसकी धार्मिकता, उसकी शांति, उसकी महिमा में वास करेंगे। मैं परमेश्वर का अति आभारी हूं कि उसने उसके राज्य में स्थान एवं सहभागिता पाने हेतु मेरा अभिषेक किया है। चाहे वो हवाई द्वीप समूह के समुद्री किनारों पर नारियल उठाने के लिए ही क्यों ना हो, विचित्र काम मुझे बहुत भाता है। मैं अपने उस समुद्री किनारे के क्षेत्र को स्वच्छ रखूंगा। प्रभु अपने वचन को आप में से प्रत्येक के मन और जीवन में अवस्थित करें। आप उसके अनुग्रह और ज्ञान में उन्नति करते जाएं। वो अपने प्रेम पूर्ण अनुग्रह के बंधन द्वारा आपको अपनी ओर आकर्षित करे कि आप सदैव उस प्रेम का, बहुतायत का और गहराई का अनुभव करें जो परमेश्वर के मन में आपके लिए अर्थात उसकी संतान के लिए है, यीशु के नाम में।